कुछ असुविधा हो सकती है, पर बच्चों का यह कार्यक्रम बड़ा प्रभावी था। जो उसमें कुछ विलंब हो गया उसके लिए खेद तो है, पर आप में से जिन्होंने बच्चों का वह कार्यक्रम देखा है आपको बड़ी खुशी हुई होगी। विगत दो दिनों से उपनिषदों का जीवन दर्शन इस विषय को लेकर के चिंतन आपके समक्ष चला हुआ है। आज उस चिंतन का तीसरा और अंतिम दिवस है। हमने इस चिंतन के अंतर्गत ईशावास्योपनिषद को केंद्र बनाया है विचार का। कल तक आठवें मंत्र तक अर्थों का चिंतन और मनन किया है। हमने यह कहा कि ईशावास्योपनिषद एक सार्थक जीवन दर्शन हमारे समक्ष रखता है। गुरु बैठे हैं, वे उपदेश प्रदान कर रहे हैं, शिष्य की उपस्थिति का अभी भान नहीं हो रहा है, पर जिस ढंग से कह रहे हैं गुरु उससे लगता है कि शिष्य बैठे हुए हैं और गुरु की बातों को सुन रहे हैं। सबसे पहले गुरु ने सिद्धांत का उपदेश दिया कि इस सारे संसार को ईश्वर से ढांक करके देखो, या उन्होंने कहा कि संसार में ईश्वर को बैठा हुआ देखो। प्रत्येक प्राणी का हृदय भगवान का बैठक खाना है, इस दृष्टि से संसार को देखने की चेष्टा करो। यही त्याग है और इस त्याग के द्वारा जीवन के भोगों को भोगो, इसमें कोई हानि नहीं है। लालच मत करो, भला धन किसका है। और इसी भाव को लेकर के 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। कर्म करते हुए ही कर्म से भागने की क्यों सोचते हो? जो इस भाव को लेकर के जीवन के कर्म करता है, कर्म चिपकते नहीं है। वस्तुतः कर्म तो वैसे भी नहीं चिपकता है। कर्म के पीछे हमारी जो आसक्ति होती है वही चिपका देती है। आसक्ति का त्याग कैसे हो? भक्ति की दृष्टि से संसार में जो भी प्राणी दिखाई देते हैं उनके हृदय को ईश्वर का बैठक खाना मान करके, और ज्ञान की दृष्टि से सब कुछ को ईश्वर से ढांक करके आसक्ति को निकालने का यह तरीका है। जो ऐसा नहीं करता है वह अंधेरे ऐसे लोगों को जाता है जहां पर ज्ञान का अभाव है, और जो अज्ञान के अंधकार से भरे हुए लोक हैं वह वस्तुतः आत्मघाती होता है, क्योंकि वह आत्मा की उपेक्षा कर देता है, उस सत्य की उपेक्षा कर देता है जो हमारे जीवन के अंतराल में विद्यमान है। प्रश्न उठा कि वह सत्य क्या है, वह आत्मा क्या है, तो उसी आत्मा का वर्णन हमने कल देखा था। उस आत्मा को सीधे साधे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह ऐसा तत्व है जो मन बुद्धि की समझ से परे है। वह वाणी का विषय नहीं है, वह अनुभूति का विषय है। अनुभूति कैसे की जाए, उस आत्म तत्व की उपाय क्या है, तो बताया ऋषि ने, जो कुछ भी संसार में है जिससे तुम्हारा संबंध है उसको नैवेद्य के रूप में भगवान के चरणों में अर्पित करो और प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। जब हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो उस प्रसाद में ईश्वर की अवस्थिति देखते हैं। सामान्य प्रसाद का टुकड़ा यदि धूल में गिर जाए, कोई कहे कि भाई यह प्रसाद है लो, हम कितनी भक्ति से अपना हाथ पसार देते हैं। वही पेड़े का टुकड़ा है, जो पेड़ा डिब्बे में बंद है वह भले जमीन पर गिर जाए, हम परवाह नहीं करते, उसे उठाते नहीं हैं। पर यदि प्रसाद का टुकड़ा है ऐसा हमसे कहा जाए तो हम उसे उठाते हैं भक्ति भाव पूर्वक। मैंने निवेदित नहीं किया है, किसी दूसरे ने निवेदित करके प्रसाद बना दिया है। वह कहता है कि यह प्रसाद है, एकदम मेरा भक्तिभाव जागृत हो जाता है। प्रसाद के रूप में उस मिठाई के टुकड़े को देखता हूं और उसी श्रद्धा के साथ ग्रहण करता हूं। इसी प्रकार यदि संसार के लोगों के प्रति, संसार की वस्तुओं के प्रति, संसार की क्रियाओं के प्रति प्रसाद का भाव हमारे हृदय में पैदा हो जाए तो वे कहते हैं ऐसा व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, समानदर्शी हो जाता है, और ऐसा एकत्व का दर्शन करने वाले व्यक्ति को मोह और शोक नहीं सताता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, आत्मा को जानने वाला आत्मा के स्वरूप का हो जाता है। यह प्रथम 8 मंत्रों में बताया गया। इसके बाद के जो 6 मंत्र हैं ये गूढ़ मंत्र हैं और टीकाकारों ने कई प्रकार से टीकाएं लिखी हैं। अविद्या और विद्या ऐसे दो शब्दों का प्रयोग किया गया है 3 मंत्रों में, और बाद के 3 मंत्रों में असंभूति और संभूति, इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन चारों शब्दों का अर्थ क्या है इस पर मत वैभिन्न है, पर हम भगवान शंकराचार्य के भाष्य का सहारा लेते हुए और उसके पश्चात आज के जीवन के अनुकूल इन शब्दों का अर्थ क्या हो सकता है, इस दृष्टि से अपना विवेचन आपके समक्ष रखेंगे। क्योंकि यह जीवन दर्शन है, जीवन दर्शन को समझाने की प्रक्रिया चल रही है। गुरुजी कहते हैं 9वें 10वें और 11वें मंत्र में कहते हैं अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूयः अपि ते तमः येव विद्यायां रताः अन्य देवाहुर विद्यया अन्य दाहुर अविद्यया इति सुषुम धीराणा ये नस्तद व्यच चक्षरे विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेद उभयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते। ये 3 मंत्र हमारे समक्ष हैं, जहां पर विद्या और अविद्या इन दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहले तो अर्थ समझ लें। 9वें मंत्र में कहा वे गहरे अंधकार में जाते हैं, अंधम तमः, एक तो तम का मतलब ही अंधकार, और फिर अंधम तमः माने अंधा अंधकार, माने खूब गहरा अंधकार। गहरे अंधेरे में वे जाते हैं जो अविद्या की उपासना करते हैं, और इनकी भी अपेक्षा मानो अधिक गहरे अंधकार में वे जाते हैं जो विद्या की उपासना करते हैं। मानो शब्द को आप रेखांकित करके सुने, यहां पर कहा है इव, ततो भूयः इव, मानो अधिक गहरे अंधेरे में वे लोग जाते हैं जो विद्या में रत हैं। क्या मतलब हुआ? जो अविद्या की उपासना करते हैं वे गहरे अंधकार में जाते हैं, और जो लोग विद्या में रत हैं वे मानो और भी गहरे अंधकार में जाते हैं। विद्या का फल अलग है, अविद्या का फल अलग है, ऐसा हमने उन धीर पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उपदेश दिया है। और उसके बाद के मंत्र में 11वें में कहा, विद्या को और अविद्या को जो उसके साथ दोनों को जानता है, यस तद वेद उभयम सह, तद माने तद आत्म तत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है, तद वेद विद्याम च अविद्याम च उभयम सह, जो आत्म तत्व को विद्या और अविद्या इन दोनों के साथ जानता है, अविद्या के द्वारा वह मृत्यु को पार करता है और विद्या के सहारे वह अमृत तत्व की उपलब्धि करता है, यह इसका हिंदी अनुवाद हुआ। अब इसके मर्म में प्रविष्ट होने की चेष्टा करें तो कहा गया कि जो अविद्या की उपासना करता है वह गहरे अंधेरे में जाता है। अविद्या का मतलब अज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव नहीं है। कहा गया कि अविद्या का उल्टा है, जो विद्या में रत हैं वे लोग मानो और भी गहरे अंधकार में जाते हैं। और तात्पर्य क्या है, जो आत्मा के साथ विद्या और अविद्या इन दोनों को जानता है, अविद्या के सहारे वह मृत्यु को पार करता है और विद्या के सहारे अमृतत्व की उपलब्धि करता है। तो आत्मा को जानो, आत्मा के साथ इन दोनों को जानने का यह लाभ। और यदि आत्म तत्व को बिना जाने हम अविद्या हस्तगत करें या विद्या में रत रहें, तो कहा गया कि जैसे अविद्या हमें गहरे अंधकार में ले जाती है, वैसे ही विद्या भी हमें और भी गहरे अंधकार में मानो ले जाती है, यदि अविद्या और विद्या के साथ आत्म तत्व का संबंध न रहे। क्या मतलब है, संसार में ये दो श्रेणियां हैं, एक विद्या की श्रेणी है। विद्या उसे कहते हैं जो हमें उस ज्ञान की ओर ले जाना चाहती है, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहेंगे, ईश्वर का ज्ञान कहेंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि हम कहते तो हैं कि हम ईश्वर की ओर जाना चाहते हैं, हम कहते तो हैं कि हम ईश्वर प्राप्ति के लिए यह विद्या पढ़ रहे हैं, पर कभी कभी विद्या ही प्रमुख हो जाती है और हम ईश्वर तत्व को भूल जाते हैं। तो जहां पर हमने आत्म तत्व को बिसरा दिया और केवल हम विद्या में रत रहे, तो वहां पर विद्या का पांडित्य हमारे हृदय में आता है। और यह जो पांडित्य आएगा यह बहुत ही खतरे का पांडित्य होता है, क्योंकि वह हमारे अहंकार को तो जन्म दे देता है। और अहंकार जहां पैदा हुआ, आत्म तत्व तो बहुत दूर चला गया, हम मानो और गहरे अंधकार में चले जाते हैं। जो अविद्या की उपासना करते हैं लगे हुए हैं कर्म में। अविद्या का तात्पर्य आचार्य शंकर ने कर्म लिया है। उस समय कर्म की एक प्रणाली थी, कर्म को समझने का एक अर्थ था। आज हम उसको ले सकते हैं कि जो कर्म है, जीवन में जो कर्म दिखाई देता है उसको हम ले लें, जो भौतिक कर्म है उनको हम ले लें। तो अविद्या से मतलब है भौतिक कर्म, जिनसे हमारी तरक्की होती है भौतिक क्षेत्र में, जहां पर हम भौतिक उन्नति करते हैं, जिसको हम विज्ञान भी कह सकते हैं। तो यह जो कर्म है, अविद्या जहां पर कही गई यहां पर, तो उसको हम इस कर्म के रूप में ले लें। कहें कि जो आज हमारी वैज्ञानिक तरक्की हो रही है, जिस तरक्की में आत्म तत्व नहीं है, उस भौतिक उन्नति को ले लें, जिस भौतिक उन्नति के साथ आत्म तत्व नहीं है। एक भौतिक उन्नति वह भी है जहां पर धर्म रहता है। जैसे धर्म की व्याख्या करते हुए कणाद ने कहा, धर्म क्या है, यतो अभ्युदय निःशेष सिद्धि सधर्मः, जिससे अभ्युदय और निःशेष दोनों सधते हैं वह धर्म है। स्वामी विवेकानंद धर्म की इस व्याख्या को बहुत पसंद करते थे। अभ्युदय का मतलब क्या है? लौकिक कल्याण। निःशेष का तात्पर्य है आध्यात्मिक कल्याण। तो धर्म वह है जिससे हमारा लौकिक कल्याण भी सधता है और आध्यात्मिक कल्याण भी सधता है। तो धर्म वह है जो हमें अभ्युदय की दिशा में और साथ ही साथ निःशेष की दिशा में ले जाता है। पर यहां पर जिस अविद्या की बात कही गई वहां पर आत्म तत्व नहीं है, वहां पर केवल भौतिक कल्याण की बात है। तो इसलिए कहा गया कि आत्म तत्व विरहित, ईश्वर विरहित यह जो भौतिक कर्म है, ये क्या करते हैं? जो इनकी उपासना करते हैं, अविद्या की उपासना करते हैं, वे गहरे अंधकार में जाते हैं। और जो विद्या में रहते हैं ईश्वर तत्व की उपेक्षा करके, वे मानो और भी गहरे अंधकार में जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण श्री राम कृष्ण का दिया हुआ, इससे बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। किसी गांव में एक भागवती पंडित रहते थे। उनके यहां दूसरे गांव की एक ग्वालिन आकर के दूध दे जाती थी। बरसात के दिन आए, दोनों गांव के बीच में एक नदी पड़ती थी। नदी में पानी चढ़ गया, एक ही नौका थी। तो जिस समय नौका ग्वालिन के गांव की ओर लगी होती तब तो ग्वालिन जल्दी आ जाती इस पार और दूध समय पर दे जाती। पर कभी कभी ऐसा भी होता कि नाव दूसरे गांव के तीर पर होती तो फिर देरी हो जाती। एक दिन पंडित जी ने कहा, देख री तू तो दूध विलंब से लाती है, ऐसा करने से तो तेरी चंडी छुड़ा देनी पड़ेगी, दूसरे से दूध खरीदना पड़ेगा। ग्वालिन ने कहा कि पंडित महाराज, आप तो जानते हो नदी चढ़ी हुई है, जब नौका मिलती है तब मैं पार आती हूं, देरी हो जाती है मेरे हाथ की तो बात नहीं है। पंडित जी ने कहा, देखो तुम कुछ भी कहो पर हमें समय में दूध चाहिए। अब क्या करे वह बेचारी ग्वालिन, एक दिन जब दूध देने आई थी तो देखा कि पंडित जी के घर में कुछ आयोजन चला है, पंडित जी कुछ कह रहे हैं, कथा कह रहे हैं। सुनने लगी वह भी, कथा रोचक लगी। समाप्त हो गई कथा तो ग्वालिन ने भक्तिभाव से पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी बोले हंस करके, क्या हुआ री, आज बहुत भक्तिभाव तू दिखा रही है। कहा कि महाराज, आज मैंने भी थोड़ी सी कथा सुनी, बहुत अच्छी लगी। तुझे कथा अच्छी लगी तो बोल क्या तूने सुना। महाराज कथा सुनी पर एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में उठ गया। अरे तू और तुझे प्रश्न उठे? अरे जो बुद्धिमान है उनके मन में प्रश्न उठता है, और तू गंवारीन जानती नहीं कुछ, तेरे मन में क्या प्रश्न उठ गया? कुछ नहीं महाराज, आप कह रहे थे ना कि भगवान के नाम में बड़ी ताकत होती है, भगवान का नाम लेकर के मनुष्य भवसागर को पार कर लेता है। हाँ हाँ कह तो रहा था, तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ नहीं महाराज, मैं बस समझ नहीं पाई कि अब भवसागर क्या है। आप कहते थे कि भगवान का नाम लेकर के मनुष्य भवसागर पार कर लेता है, इतनी ताकत है, तो भवसागर क्या है बस यही समझा दीजिए। पंडित जी हंसे, आखिर तू गंवारी ठहरी ना, अब तुझे मैं कैसे समझाऊं कि यह भवसागर क्या है? अजी महाराज, अगर मुझे समझा नहीं सकते तो फिर किसको समझाएंगे आप? आप तो मुझे समझाइए। पंडित जी ने कहा, एक विचार कौंधा, अच्छा देख यह जो गांव की नदी है, इस नदी को पार करना कितना कठिन है? बहुत कठिन है महाराज, जब पानी चढ़ा होता है तो कोई पार नहीं कर पाता। उस दिन मंझलू मांझी का लड़का एकदम से तैरने लगा तो पानी तो बहा करके ले गया, गुहार मच गया गुहार, कैसे भी करके उसे बचाया। अब कितना बढ़िया तैराक है मंजलू का लड़का, तो महाराज नदी को पार करना बहुत कठिन। पंडित जी मन ही मन खुश हुए और कहने लगे, सुन ऐसी हजार 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 नदियां एक साथ मिल जाएं तो उसको कहते हैं सागर, तो बता भला उस सागर को पार करना कितना कठिन न होगा। अब उस ग्वालिन ने अपने ढंग से हिसाब लगाया, एक नदी को पार करना इतना कठिन तो हजार हजार ऐसी नदियां मिलकर के सागर बनाए, कहा महाराज असंभव असंभव। पंडित जी बड़े खुश हुए अपनी बुद्धि पर, कहने लगे कि देख यह तो सागर है, और फिर भवसागर ऐसा होता है। जब तात्विक विवेचन करना शुरू किया भवसागर का, ग्वालिन ने कहा महाराज यह तो मेरे कुछ माथे पड़ता नहीं, बस आपने जितना कहा उससे बात समझ में आ गई। क्या हुआ रे? यही ना, आप कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से मनुष्य भवसागर पार कर लेता है। मैं बस इतना ही जानना चाहती थी कि जो भवसागर है वो हमारे गांव की नदी से बड़ा होता है या छोटा होता है। अरे रही ग्वान मूर्खा है रे, बिल्कुल क्या तू पूछती है, यही पूछ रही है। बस बस महाराज, जब आप कहते हैं कि नाम में इतनी ताकत कि नाम लेकर के भवसागर पार हो जाता है, तो क्या गांव की नदी को कोई पार नहीं कर सकेगा भगवान का नाम लेकर के? पंडित जी ने कहा हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकेगा, जरूर पार कर सकेगा। बस बात गांठ बांध ली, और उसके बाद से रोज समय पर पंडित जी को दूध मिल रहा है। एक दिन देखा ग्वालिन को पंडित जी ने, हंस करके पूछा, क्यों री बहुत पैसा हो गया है ना, समय पर दूध दे जाती है? कहा महाराज हाँ आजकल तो समय पर ही दे जाती हूं। क्या तूने अपने लिए नाव खरीद ली? महाराज आपने नाव दी ना, खरीदने की क्या जरूरत? क्या क्या कहती है तू? महाराज आपने ही तो बताया ना, भगवान का नाम लेकर के जब भवसागर पार किया जा सकता है तो फिर गांव की नदी की क्या बिसात? तू क्या कह रही है? पंडित जी को आश्चर्य, ये पंडित जी विद्या में रहते हैं, अनुभूति नहीं है। बात के लिए बात उन्होंने कह दी, पर इसने गांठ पकड़ ली। कहा महाराज बस भगवान का नाम लेती हूं, पानी पर से चली जाती हूं, क्या कहती है तू? आंखें फाड़ फाड़ करके पंडित जी ने पूछा, विश्वास नहीं हुआ। ग्वालिन ने समझा कि शायद मेरे नाम लेने में कोई गलती हो। कहा महाराज आज मैं वापस जाऊंगी तो आप चलना साथ में, मैं चलूंगी नदी पर से, मेरे पीछे पीछे आकर के बता देना कि मैं ठीक नाम ले रही हूं। तो पंडित जी ने कहा बिल्कुल ठीक चलूंगा। गए पंडित जी, देखते क्या है, ग्वालिन न तो अपना कपड़ा ऊपर उठाती, कुछ नहीं, नदी चढ़ी हुई है, और वहां पर भगवान का नाम लेकर के ग्वालिन यूं चलती है जैसे जमीन पर चल रही हो। और ग्वालिन कहती महाराज पीछे पीछे आओ, कोई यदि गड़बड़ी हो गलती हो तो मुझे बता देना। अब पंडित जी इतस्ततः कर रहे हैं कि कैसे जाया जाए, इतना पूर विश्वास तो है नहीं। ग्वालिन ने कुछ दूर जाकर के देखा कि कोई आवाज नहीं आ रही, लौट करके देखा पंडित जी वहीं पर तीर पर खड़े टलम टल कर रहे हैं। ग्वालिन ने कहा महाराज आओ न जी, मेरे पीछे पीछे आओ। पंडित जी ने मन में विचार किया कि मैं इतना बड़ा पंडित इतना बड़ा ज्ञानी, यह गंवार स्त्री जब भगवान का नाम लेकर के चल सकती है, मैं क्यों नहीं कर सकता? भगवान का नाम लिया, उनको तो भगवान के बहुत से नाम मालूम थे, नाम लिया, एक कदम नदी में रखा कि धम से कमर इतने पानी में गिर गए। ग्वालिन ने कहा महाराज खेल मत करो। ग्वालिन ने समझा कि पंडित जी खेल कर रहे हैं, यह तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, आप ऐसा मत करो। मैंने कहा ना मंजलू माझी का लड़का उस दिन बह गया था, ऐसे नहीं महाराज, जैसे मैं आ रही हूं वैसी आओ, खेल मत करो। और इधर पंडित जी भगवान का नाम जोरों से लेते हैं, और एक दूसरा कदम डालते हैं कि पानी का वेग बहा ले जाता है। अब पुकार मच गई, दौड़ो दौड़ो पंडित जी को बचाओ, मिलकर के बचाया जाता है। बेहोश हो चुके हैं, पानी पी चुके हैं, पेट से पानी निकाला जाता है, उसके पश्चात उन्हें घर पहुंचा दिया जाता है। ग्वालिन गई नहीं है, देख रही है। जब पंडित जी कुछ स्वस्थ हो गए तो ग्वालिन ने पास में जाकर के पूछा अकेले में, महाराज दवा आपने दी और दवा का काम मुझ पर हुआ, आप पर दवा कैसे नहीं लगी? यह प्रश्न है। अविद्याम उपासते और विद्यायाम रता, तो जो विद्या में रत है उसको विश्वास नहीं है, वह केवल अपने अहम की पुष्टि के लिए विद्यार्जन करना चाहता है, यह तो मानो और भी गहरे अंधकार में जाएगा। जैसे कहावत है ना, जो सही सोया हुआ है उसको जगाना आसान है, पर जो सोने का ढोंग करता है उसको तो जगाना बड़ा कठिन है, जगा ही नहीं सकते। तो जो विद्या में रत है वह सोने का बहाना मानो करता है, उसको तो ज्ञान का अभिमान है, उसको कौन सिखा सकता है? तो जिसके भीतर में ज्ञान का अभिमान, उसको सिखाया नहीं जा सकता। पर जो गंवार है, जो जानता नहीं है, उसको सिखाया जा सकता है। तो यहां पर कहा जा सकता है, इस उदाहरण के माध्यम से इस मंत्र को समझने की चेष्टा करें। ठीक है, कोई कर्म में लगा हुआ है, गहरे अंधेरे में चला जाएगा, क्योंकि आत्मतत्व कर्म से युक्त नहीं है। और यहां पर कहा, पर जो विद्या में रत है और विद्या आत्मतत्व से युक्त नहीं है, यह तो मानो और भी गहरे अंधकार में जाएगा। इन दोनों का फल अलग अलग है, कर्म का फल अलग यानी अविद्या का फल अलग, विद्या का फल अलग है। अविद्या का फल क्या है, कर्म का फल क्या है? कर्म हमारी भौतिक उन्नति साधित करता है, हम क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं भौतिकता के। भारत ने एक प्रकार की उपेक्षा की, विदेशों ने दूसरे प्रकार की उपेक्षा की। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भारत ने कर्म की उपेक्षा की, हम विद्या की चर्चा में लगे रहे, और बाहर के देश कर्म के क्षेत्र में कितने आगे बढ़े, उन्होंने इस आत्मज्ञान की उपेक्षा कर दी। दोनों के दोनों ही कहीं पिछड़े हुए हैं। बाहर के देशों में भौतिक तरक्की तो है, हमें अच्छा लगता है भौतिक तरक्की देख करके, पर उनके जीवन में एक विष उतर आया है। कितना विषाक्त उनका जीवन हो गया है, आप लोग जानते हैं। वहां पर मनुष्य कितने तनाव में रह रहा है। भौतिक तरक्की ही अगर सब कुछ होती तब फिर तनाव क्यों होता? यदि संसार में धन ही सब कुछ होता, वैभव ही सब कुछ होता, अमेरिका के पास क्या कम वैभव है? पर अमेरिका के पास दुख भी कितना है, हलाहल भी कितना है, आखिर वह भी तो हमें देखना है। और भारत में हम केवल विद्या की चर्चा करते रहे, पर भौतिक दृष्टि से हम कितने नीचे गिर गए, हमारा पेट भूखा रह गया, हमने अविद्या की उपेक्षा कर दी, कर्म की उपेक्षा कर दी। स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए तो कहा, भूखे पेट में धर्म तो नहीं होता है, पहले भारत के भूखे पेट को भरना होगा। स्वामी विवेकानंद ने एक अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया, वह समन्वय ईशावास्योपनिषद में हमें मिलता है, कि यदि तुम पेट की उपेक्षा कर देते हो तो धर्म कहां से आएगा? भारत में हमने केवल विद्या की चर्चा की और हम पिछड़े हुए हैं। हम अपने देश को देखते हैं, न तो चरित्र में आगे और न तो अध्यात्म के क्षेत्र में आगे। हम अध्यात्म के केवल नाम ही लेते हैं, हम गौरव गाथा कहते हैं अपने पूर्वजों की, पर यदि हम अपने जीवन को देखें तो हमारा चरित्र कहां गया है? सड़ रहा है, एक क्षणांध पैदा हो गई है। भारत को देख करके कभी कभी ऐसा लगता है कि कितनी बार डायलिसिस किया जाए, शायद हमारा रक्त ही खराब हो गया है, इतना दूषण हमारे रक्त में आ गया है। तो केवल विद्या की चर्चा करना यह भी कितना खतरनाक होता है, यह भारत को देख करके सीख सकते हैं। और केवल कर्म की चर्चा करना, यह कितना खतरनाक हो सकता है। यह हम अमेरिका इत्यादि देशों को देख करके कर सकते हैं। आप पढ़ते हैं स्वीडन के बारे में, पहले हम लोग पढ़ा करते थे स्वीडन पैराडाइज ऑन अर्थ कहते थे, यह भू स्वर्ग है, जहां पर तुमने स्वर्ग भले न देखा हो स्वीडन को देख लो, सारे स्वर्ग के सुख हमारे सामने हैं, ऐसा स्वीडन। तो जो पैराडाइज था वहां पर एक दिन अचानक हेल आ गया। आप पढ़ते हैं आज से लगभग 25-30 साल पहले जो भू स्वर्ग था उसने भू नरक होना शुरू किया, और स्वीडन में कैसा नरक आ गया है। आप में से जो लोग गए हो स्वीडन या जो लोग वहां के बारे में पढ़ते हों,